प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
बोलो सतगुरु देव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री क्रोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत सहे गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जान कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशम धुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम मे परवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गण नायक गणताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेश। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा दावे शेष 88 उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा दावे शेष 88 उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं दरूं चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूं गुरुदेव का रामपाल दास का नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाम। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो दे वो सोख। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो करनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। ए गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बक्सो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिक भरे विकार, तुम दाता दुख बंजना, मेरी करो सुनार। सूरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बां। ए बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का, सूजत और न ठोड़। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रजनार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब जी अपने विषय में अपनी जानकारी प्रदान करने के लिए वह स्वयं ही अपने निज स्थान से अमर लोक से सतलोक से चलकर आते हैं। यहाँ के जो भगवान हैं, जो यहाँ के प्रभु हैं, स्वामी हैं, जो यहाँ का राजा है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ब्रह्म, जिसे काल बोलते हैं, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूँ। अब इन सभी लोकों का यानी उपस्थित सेनाओं का नाश करने के लिए अब परिवर्त हुआ हूँ। ये काल कौन है, इसकी जानकारी परमेश्वर कबीर देव जी ने ही आके बताई है कि ये श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके भूतवत प्रेतवत गीता जी के ज्ञान को कह गया। तो वो काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, हम इस काल के जाल में फंस गए हैं। इसको 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपत शिला पर भूनकर उससे निकला हुआ गंध खाने का श्राप लगा हुआ है। इसी उद्देश्य से इसने हमें यहां पर बाई फोर्स रोका हुआ है, जबरदस्ती रोक रखा है, जबरदस्ती हमसे सब कार्य करवा रहा है। जैसे संतानों उत्पत्ति, फिर इनकी परवरिश, इनमें मोह ममता, संपत्ति के अंदर ममता, ताकि हम यहाँ अपना टाइम पास करते रहें। फिर जब भी इसने जिसके भी पुत्र को मारना है उसको मार देता है, किसी की पुत्री को, किसी के पिता को, पूरे परिवार को। इसने अपने पूरा 100,000 का कोटा प्रतिदिन हम में से ही चुन लेना है। ये तो ऐसा कर रखा है जैसे इसने खेती बो रखी हमारी, और उसमें से जो भी वस्तु इसको चाहिए उसी को निकाल ले जाता है, अपना खा लेता है। पुण्यात्माओं, ये इतना कटु सत्य है कि प्रथम बार कोई प्राणी सुनता है उसको ये महसूस होता है कि ये दंत कथा है, लेकिन ये सत्य कथा है, इसमें जरा सी भी कोई जो है चूक नहीं है, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, ये शत प्रतिशत सत्य है। ये जानकारी परमेश्वर कबीर देव जी, जो हम सबका पिता है, जो हम सबका जनक है, जिसमें माता पिता भाई वाले सभी गुण होते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रोणी तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव, ये वो परमात्मा है जिसके विषय हम ये सेंटेंस बोला करते थे। ये कबीर देव, ये कबीर परमेश्वर वो परमात्मा है जो बनारस में काशी शहर में एक दुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष इस पृथ्वी पर रह करके वो परमात्मा सहशरीर चले गए, सहशरीर ही आए थे, क्योंकि परमेश्वर किसी मां से जन्म नहीं लेते। यदि कोई मां से जन्म लेकर और फिर वो भगवान की संज्ञा में हम लेते हैं उसको, तो वो मां से जन्म लेने वाला परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उस सबका जनक नहीं रहा। हम श्रद्धालु हैं, हम किसी भी प्रभावशाली देव को सर्वेश्वर मान लेते हैं। इसी भूल को मिटाने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं। कबीर देव जी वो पूर्ण परमात्मा है, सर्वश्रेष्ठ की रचनहार है, कुल के मालिक है। पुणात्माओं, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान कराया कि हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। आप देख रहे हो प्रतिदिन समाचार पत्रों में या टेलीविजनों में या वैसे कोई अपने आस पड़ोस में, प्रतिदिन ना जाने कितने व्यक्ति कोई दुर्घटना से, कोई वैसे किसी बीमारी से या किसी और कारणों से प्रतिदिन कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, जिसमें पूरा परिवार का परिवार भी चला जाता है और किसी परिवार के दो दो तीन तीन सदस्य एक ही दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये सब क्या है? हम जीव हैं, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाई। हम ये सोचते रहे कि शेष कुशल रहें भगवान। अब शेष कुशल कैसे रहेंगे? उन शेष के लिए क्या एक्स्ट्रा कोई हमने ऐसा प्रोटेक्शन बना रखा है? तो ये हमारी जीव संज्ञा की सोच थी। अब परमात्मा ने आके बताया है कि कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। अब क्या बताया परमेश्वर कबीर जी ने कि वैसे तो ये शरीर तुम्हारा एक दिन ना एक दिन अंत होना ही है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये जो अकाल दुर्घटनाएं से मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु, इनसे बचाया जा सकता है, क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी की शरण नहीं आते हैं, तब तक हम अपना केवल प्रारब्ध ही प्राप्त करते हैं। उस प्रारब्ध में आपकी जिस समय जिन कारणों से भी मृत्यु होती है वो हो जाती है। उस दौरान जैसा भी आपने कोई पुण्य पाप किया वो आपका दोनों ही अकाउंट ओपन रहते हैं। आपके जो पाप है वो बैड अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट होते रहते हैं और जो आप पुण्य करते हो वो ऑटोमेटिकली आपके गुड अकाउंट में जमा होते रहते हैं। अब पुण्य पाप का जो हिसाब किताब है, अकाउंट है, वो बहुत ही लंबा चौड़ा है। आप अच्छी सोच भी किसी के प्रति रखते हो वो भी आपके पुण्य में होती है। आप किसी के बारे में मलिन सोच भी रखते हो, किसी का बुरा करने की सोच भी लेते हो, तो भी आपके बैड अकाउंट में वो सोच का जितना भी आपको पाप लगना है वो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाता है। आपने कहीं कोई पक्षियों को दाने डाल दिए वो आपके गुड अकाउंट में, पक्षियों को दाने डालने के लिए जितने सफर में आपके पैरों के नीचे जीव मरे वो बैड अकाउंट में। आप कहीं तीर्थ पर गए हो, तीर्थ पर जाकर आपने दान कर दिया, भंडारे कर दिए, तीर्थ पर किए हुए पुण्य का जो गुड अकाउंट में, और तीर्थ तक जाने के जो पाप आपके पैरों के नीचे जितने भी प्राणी मरे जीव जंतु मरे वो आपके बैड अकाउंट में, इस प्रकार ये दोनों अकाउंट आपके बराबर चलते रहते हैं। और परमात्मा का विधान है कि जैसा कर्म जो कोई करता है उसको वैसा ही भोगना भी पड़ता है। अपने आत्माओं, जब हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी की शरण में और इस सत्य नाम का जाप करते हैं पूर्ण संत से प्राप्त करके, तो उस समय बैड अकाउंट बंद हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? जैसे किसी ने लाइसेंस बनवा रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक प्रमाण पत्र, और वो सड़क से जा रहा है या कहीं भी रास्ते में जा रहा है, उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, वो 90% बरी होता है, क्योंकि उसने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया, क्योंकि वो ट्रेंड आदमी है, उसके पास प्रमाण पत्र है। तो उससे कोई दुर्घटना में कोई गड़बड़ हो भी जाती है किसी कारण से, तो उस वो दोषी नहीं होता, कारण कोई और हो सकता है, कोई ब्रेक फेल हो जाए, स्टेयरिंग फेल हो जाए, कोई और भी कारण हो जाए, सामने वाले की गलती से भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस प्रकार वो लाइसेंस शुदा व्यक्ति उस दुर्घटना में दोषी नहीं होता, और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले जो अधिकारी होते जांच अधिकारी यही देखते हैं कि लाइसेंस है आपका, लाइसेंस नहीं है तो फिर उसको सीधा ही सजा होती है, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। तो इसी प्रकार जब तक आपने लाइसेंस नहीं बनवाया है, आप साधना कर रहे हो यानी गुरु नहीं बनाया है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो पुण्य या पाप आपसे हो रहे हैं, तो आप क्योंकि लाइसेंस ना होने से आप उस शुभ काम के लिए जा रहे हो, बीच में आपका एक्सीडेंट से आपके पैरों के नीचे जो भी जीव हिंसा होती है वो आपको भोगनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। फिर आप कहोगे कि लाइसेंस तो हमने बनवा रखा है क्योंकि गुरु बना रखे हैं, जैसे कोई राधा स्वामी से उपदेशी है, कोई सच्चा सौदा डेरा से सिरसा से उपदेशी है, कोई ब्रह्मा कुमारी औलम से उपदेशी है, कोई अन्य किसी संत या पंथ से जुड़ा हुआ है, तो वो नकली पासपोर्ट बना रहे, वो नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, वो अधिकारी नहीं है, वो संत नहीं है। अपने आत्मा, ये आपके दिल में एक बार खटके गई ये बात कि वो नकली गुरु हैं, ये तो आपके उस अज्ञान का ही कारण होगा जिस कारण से आप ये महसूस करोगे कि संत सबको नकली बता रहा है। नकली और असली मेरे कहने से नहीं होंगे, उनके जो चिन्ह हैं, लक्षण हैं, वो बताएंगे कि वो असली है या नकली है, और उनके सब के जो दास ने ये लक्षण बता दिए हैं कि ये संत नहीं है, इनसे जिनको उपदेश है उनका लाइसेंस अनऑथराइज्ड है, और फिर जब यहां से संसार छोड़कर जाओगे वहां पर इन गुरुओं से उपदेश लेने से आपको कोई प्रोटेक्शन, कोई बचाव नहीं होगा, उसमें बहुत देर हो चुकी होगी, आपको वहां पश्चाताप और रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। दास का ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी की क्रिटिसाइज करूं, आलोचना करूं, लेकिन परमेश्वर ने इस दास को यह सेवा दे दी कि सच ही कहूं, सत्य कहूं, ताकि पुण्यात्मा सावधान हो जाएं और उन नकली गुरुओं से वापस आकर के अपना जो ना सच्चा लाइसेंस बनवा ले और जीवन रूपी सफर में वो आगे बहुत चलना है, उसमें अपना बचाव करें और सफलता प्राप्त करें। राधा स्वामी पंथ ने सबसे ज्यादा जीवों को घेर डाला, ये काल का पंथ है, क्योंकि जहां से ये पंथ चला है उसका कोई गुरु नहीं। श्री शिवदयाल जी आगरा वाले, उन्हीं की जीवनी में लिखा है कि स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। और परमेश्वर की अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, और सभी संतों ने जिन्हें परमात्मा पाया है उनके अमृत वचनों में ये स्पष्ट किया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु नहीं जिस व्यक्ति का, तो आगे चल के वो बहुत दुख पाता है। क्या होता है कि पिछले पुण्य इतने होते उन पुण्यात्माओं के, जो पुण्यात्माएं किसी गुरु पद को प्राप्त कर रहे हैं, कोई संत बन गया है, ये काल का जाल है। वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनकी वचन में भी प्रभाव होता है, उनके बोलने की शैली में भी बहुत एक आम व्यक्ति से अंतर होता है, और जिस कारण से वो अपने पिछले पुण्य से, पिछली चार्ज बैटरी से, पिछले जन्म की सिद्धियों से वो बहुत सी जनता को अपने पीछे तो लगा सकते हैं, लेकिन अंत अनुयायियों का भी, अर्सन का भी बहुत बुरा होता है। तो प्रसंग ये चल रहा है कि जो इन नकली गुरुओं से उपदेश प्राप्त कर रखा है बोधी श्रद्धालुओं ने, बोधी आत्माओं ने, और वो ये सोच रहे हैं कि हमने गुरु तो बना ही रखा है, नहीं, गुरु पूरा हो, ज्ञान सच्चा हो और आपकी श्रद्धा भी सच्ची हो, तब बात बने। अब यहां आपको थोड़ा सा पैरल एक प्रमाण देने पड़ेंगे, अन्यथा आप जी समझ नहीं सकोगे कि दास का क्या उद्देश्य है, क्यों कह रहा है, और सचमुच ऐसा है भी कि नहीं। श्री शिवदयाल जी जो आगरा में हुए हैं, उनको ये लोग परम धनी और परम पूज्य, पूर्ण ब्रह्म आदि नामों से, संज्ञाओं से, उपमाओं से सब सुशोभित करते हैं, और उनका कोई गुरु नहीं था। शिवदयाल जी से राधा स्वामी पंथ व्यास से प्रारंभ हुआ, जो श्री जयमल सिंह जी ने वहां प्रारंभ किया। श्री जयमल सिंह जी को कोई आदेश नहीं था शिवदयाल जी का कि तू वहां कोई नारा सांग जोड़ ले, क्योंकि सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। सन 1889 में श्री जयमल सिंह जी फौज से रिटायर हुए, मिलिट्री से। उन्होंने अपना मनमुखी व्यास में डेरे का लठ गाड़ दिया और उनको कोई आदेश नहीं था। प्रथम तो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, उनके पास यथार्थ मंत्र नहीं थे, उनका कोई यथार्थ ज्ञान नहीं था, जिस कारण से वो स्वयं भी अपना जीवन व्यर्थ कर गए और करोड़ों इन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करने का वो पाप भी साथ ले गए। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं इस राधा स्वामी पंथ की और इससे निकली भी ब्रांचों की। पुण्यात्मा दास का उद्देश्य ये है कि जैसे एक बार नकली नोट किसी व्यक्ति ने छाप लिए और जनता को वो धोखा दे रहा था, 500-500 के नोट, सरकार को पता लगा, उन नकली और अपने असली नोटों को दोनों को साथ साथ रख के और जनता को सावधान किया कि ये नकली है, इसकी ये पहचान है, ये ओरिजिनल है, इसकी ये पहचान है। अब इस जो है कार्य को, इस शुभ कार्य को कोई ये कहे कि सरकार आलोचना कर रही है, समाचार पत्रों वाले आलोचना करते हैं किसी के नोट को नकली बता रहे हैं, तो उसकी बुद्धि कितनी होगी, बालक के सी। इसी प्रकार इस दास के प्रयत्न को
जो कोई आलोचना कहता है वो बालक ही हो सकता है, बालक बुद्धि का, या कोई शराबी हो सकता है, या उस ग्रुप का हो सकता है जो उन नकली नोटों को छाप रहे हैं। तो जो ये समझदार होगा ये समझ जाएगा कि ये देखिएगा नकली और असली में कितना अंतर है, तो फिर वो अपने हानि से बच जाएगा और अपना नकलियों को फेंक देगा, असली नोट प्राप्त करेगा, वो निर्धन नहीं होगा, हानि ना होगी। पहले तो थोड़ा सा मौखिक बताते हैं इस पंथ के बारे में। श्री शिवदयाल जी ये एक खत्री परिवार से थे और आगरा में रहते थे। इनके घर पर इनके माता पिता जो थे वो श्री तुलसी साहेब हाथरस वाले के शिष्य थे, और ये शिवदयाल जी भी उस तुलसी साहेब हाथरस वाले के वचनों को घर पर सुना करता था। फिर ये क्योंकि ये पश्चिमी पाकिस्तान में इनका घर था और वहां गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत वाणियां चला करती थी, तो ये गुरु ग्रंथ साहब का पाठी भी रहा है। और आगरा में गुरुद्वारा था, उसके अंदर निर्मले साधुओं का, जो नानक साहिब जी के पुत्रों ने निर्मला पंथ चला रखा, उस गुरुद्वारे में जाकर के ये वहां वाणी पढ़ा करता था। और उस संत था एक उस गुरुद्वारे में, उससे भी ज्ञान प्राप्त किया करता था, उससे शब्द और सुरत का इसने ज्ञान सीखा जैसा उसने पता था। फिर कुछ अपनी अटकल, कुछ दूसरों से सुना सुनाया खिचड़ी ज्ञान, ये स्वयंभू संत बन बैठा। उसके बाद इसने कई घंटों तक साधना की, कई कई दिन तक बैठा रहता, कई कई दिन बाहर नहीं निकलता, कोठे में कोठे यानी गुफासी में जाकर के वहां साठियों क्या करता था, जो किसी भी संत मते में या किसी भी संत ने ऐसी क्रियाएं नहीं की। उसके बाद क्या हुआ कि आगरा से ही एक पंथ निकला है जय गुरुदेव मथुरा में, ये वही पांच नाम देते हैं जो काल के हैं, जो मोक्षदायक नहीं है। और वहीं से एक पंथ, एक व्यक्ति ने, जैसे राम सिंह जी थे जुई गांव के हरियाणा के, और राम सिंह जी के शिष्य थे एक ताराचंद जी जो दनोद गांव में, उन्होंने अपना अलग राधा स्वामी पंथ का एक आश्रम बना लिया। उसी आगरा से ही एक पंथ निकला, अभी बताया आपको, श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने स्वयंभू संत बनकर ब्यास में एक डेरा स्थापित कर दिया। जयमल सिंह जी के शिष्य हुए श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे श्री बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसका वास्तविक नाम था श्री खेमामल, वो बलोचिस्तान के रहने वाले थे। और एक कृपाल सिंह जी, ये दोनों शिष्य उत्तराधिकारी समझते थे अपने को, श्री सावन सिंह जी के उत्तराधिकारी समझते थे, लेकिन श्री सावन सिंह जी ने इन दोनों को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, उन्होंने श्री जगत सिंह सरदार जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये दोनों वहां से विमुख होकर, गुरुद्रोही होकर, इन दोनों ने श्री खेमामल जी अर्थात श्री बलोचिस्तानी सामस्ताना जी ने डेरा सच्चा सौदा सरसा में अलग से स्थापना कर दी। और फिर वो जो श्री खेमामल सिंह जी अर्थात बलोचिस्तानी सामस्ताना जी, अंत में इंजेक्शन रिएक्शन होने से अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो किसी को गद्दी नसीन नहीं बना के गया। उसका जो उत्तराधिकारी संगत ने चुना, उसके साथ काफी संघर्ष रहा श्री सतनाम सिंह जी। दूसरा एक और अपने आप को उत्तराधिकारी समझता था, लेकिन अंत में इनके कई दिन झमेले पड़ गए, सतनाम सिंह तो बना दिया सरसा का उत्तराधिकारी, यानी गद्दी पर बैठा दिया एज ए मैनेजमेंट करने वाला। और दूसरे ने जाकर जगमाल वाली बना लिया अपना अलग, वहां भी लाखों व्यक्ति उसके साथ लगे हुए। अब ये समझ लेना पुण्यात्माओं, जो जहां भी फंसा है उसके लिए एक आगाह किया जा रहा है उसको कि तुम कहां हो, अपनी स्थिति से स्वयं परिचित हो जाना। उसके बाद श्री कृपाल सिंह जी, जो सावन सिंह जी के शिष्य थे बागी, उन्होंने स्वयं भू संत बनकर दिल्ली में अपना अलग से मार्ग चला लिया। उस कृपाल सिंह जी का एक शिष्य बागी हो गया ठाकुर सिंह, उसको गद्दी मिली नहीं दिल्ली की, उसने अपने दर्शन सिंह को दे दी, वो अलग उसने नारा सांग जोड़ दिया। ये बोड़ी आत्माओं ने भगवान की जरूरत है, आवश्यकता है, इनको कोई वह काले दो चार बात अलग से जानता हो और जिसमें नाम भगवान का आता हो, क्योंकि आत्मा भगवान को परमात्मा को उसी दिन से खोज रही है जिस दिन से ये उससे विमुख हुई है, इस पर गलती बनी हुई है। अब पुण्यात्मा समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई उस साधना से जो अन्य सभी भक्त कर रहे हैं, उसके अनुयायी कर रहे हैं, तो इससे आपको सहज में आसानी से निर्णय हो जाएगा कि अन्य का क्या होगा। जब उनके मुखिया की ऐसी दुर्गति हुई, वो प्रेत बना, अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगा, फिर उसी तरह हुक्का पीने लगा, जो पहले की तरह भोजन खाने लगा, और किसी उसके जो शिष्य थे कोई उन पर आपत्ति आ जाती तो उस बुक्की के सामने खड़ा होकर उस प्रेत से प्रश्न करते, वो प्रेत उत्तर देता, तो पुण्यात्माओं अनमोल मनुष्य जीवन उसने अपना भी बर्बाद कर लिया और करोड़ों जीवों को और काल के मुंह में फंसा कर चला गया। अब गलत साधना करने से, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी, चीफ ऑफ द राधा स्वामी पंथ श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई। पहले ये दिखाते हैं आपको, उनका कोई गुरु नहीं था और परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जे पूछो वेद पुराण। श्री शिवदयाल जी पांच नाम दान करते थे, ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। ये कट्ठे जाप करने हैं, कट्ठे जाप करने हैं, जैसे ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम, सतनाम। सतनाम भी एक जाप करने का ये बताते हैं। तो इनकी बुद्धि कति गामजारी है, कति कंडम थे ये लोग, बालक भी अच्छा ज्ञान रखते हैं इनसे, जो इनका ज्ञान आपको दिखाएंगे, और ये बन गए संत। अंधों में अंधे ही मुखिया बन गए, और परमात्मा कहते अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। अब देखो श्री शिवदयाल जी की के दुरुक्ति हुई, जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है, जिसने यो इतना बड़ा जन समुदाय डुबो दिया। देखिएगा उनका जीवन चरित्र, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग से, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ। ये शिवदयाल जी का छोटे भाई थे, तीन भाई थे ये, सबसे छोटा ये प्रताप सिंह सेठ था। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा। ये देखिए, ये है श्री शिवदयाल जी, इनके बारे में क्या लिखा है, परम पुरुष पूर्ण धनी अधूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से प्रकाशित है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब दिखाते हैं, स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था, ये देखिएगा पृष्ठ 28 पे, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज पृष्ठ 28 पे, स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया, ठीक। और फिर इसकी क्या दुरुक्ति हुई, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 78 पे, प्रश्न नंबर 78 पे, ये वचन नंबर 71 है। अब बुक्की जी का कि जो सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है,
यह सिब्बो जिसे कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी, जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुरख अंगारासी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। ये तो किसी में प्रेत हो ना उसके लक्षण होते हैं। और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था, वो पड़ी रहती थी बेहोश, जैसे आप देखते हो जिसमें प्रेत आ रहा है वो पड़ा रहा है, आंख लाल हो जाती है। तो स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, अभी शिवदयाल जी हुक्का पीता था या करते थे, या अभ्यास का रस लेते हुए या कथा कहने बैठते तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। अब राधा स्वामी पंथ के श्रद्धालु किसी अन्य से पूछते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे गुरुजी चरण छुआते हैं, तो हमारे भक्त कहते हैं हाँ जी हमारे गुरुजी चरण छुआते हैं। कहते पूरे गुरु की पहचान ये है, राधा स्वामी वाले कहते हैं कि पूरा गुरु जो होगा वो चरण नहीं छुआता। अरे बुक्की उसके चरण का अंगूठा चूसा है और दूसरे कोई मत्था टेकना हो जब उनको कह दिया जाता था कि दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। तो ये दंत कथा लोकवेद ये अपने भी पंथ से परिचित नहीं है, अपने भी उनको जानकारी नहीं है। अब आगे देखते हैं, अब बुक्की जी को के विषय में आगे पढ़ते हैं, देखिएगा। दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और पैसी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। अब उस पीड़ा करती थी, भूत गेरे रहता इसने। अब झूठा ज्ञान ये ध्यान का लावे, अब ज्ञान दिखाएंगे इसका। भजन करती थी, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब वो तो दर्शन के थे गुरु जी के, तो सामने बैठे थे, वो आधार के होता है इसमें। ये की बनावटी बातें हैं सारी, जो निराधार कथाएं हो गया था। और सूरत भी ऊंचे देश में जाती थी, इवन के देश दिखाऊंगा किस जाती थी सूरत इसकी। जब ज्ञान ने इनका ठीक नहीं, सूरत कहाँ जाएगी, फिर बाढ़ में जाएगी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी इनकी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और दो दो दिन हाजिर जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 महीने ये हाल रहा, सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए बुक्की को और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेस्तर किया करती थी उसी तरह करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, जैसे पहले रोटी बना करती शिवदयाल जी के, और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले 10 दूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। ये लेखक है शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह जी, वो कहता है कि मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले की तरह भोग भी तैयार करती थी और पलंग बिछाती और हुक्का भरने लगी, और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से की पेस्तर सेवा किया करती थी, पेस्तर माने पहले उसके जीते जी, गर्ज की जिस तरह से पेस्तर सेवा किया करती थी यानी जैसे पहले सेवा करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। आप देख लो, अब बुक्की में आ जाता हो और वह हुक्का रोटी खाता, वो खुद बुक्की के माध्यम से, और बुक्की हुक्का पीती उसी पलंग पर बैठ के,
यानी शिवजाल जी बुक्की में प्रवेश होकर पहले की तरह कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर्ध्यान होने के पेस्तर यानी पहले करते थे। अंतर्ध्यान होने से पहले रोटी भी खाता था, वो उक्का भी पिया करता, वो खाना खा के फिर उस बुक्की में आ गया। फिर वो बुक्की लड़की खाना बनावे अब पे खावे, उसमें भूत खावे और उक्का पियो, पहले ना पीती थी फिर उक्का पीने लगी। वो भूत बनकर शिवजाल जी राधा स्वामी पंथ के मुखिया उसमें प्रेत बनकर आगे अपने शिष्य बुक्की में और उक्का उसी तरह हुआ, उक्का पीवे उसके माध्यम से और रोटी खाना खावे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसमें अमरी इतने उसका माए बड़े रहे, प्रवेश रहे भूत। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफत कर लिया करते थे। अब मान लो किसी ने प्रश्न करना था स्वामी जी से, बुक्की के सामने बोलते, वो भूत बोलता फिर बुक्की में शिवदयाल जी, है तरह गजब भैया। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी, क्योंकि बुक्की जी स्वामी जी को ध्यान के समय प्रकट कर लेती थी और फिर बोला करती थी। यार इनकी अपनी बनावटी बात है, जिस तरह ये क्रिया हो रही है ये बिल्कुल भूत उसमें बोला। आगे देखना, इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी, जी घबराता था, तो तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया फिर, और उसके भाई में ना लग गया या ओरा में ना लग गया, वो भूत आएगा उसमें प्रवेश हो गया और उसमें बोलने लग गया जैसे आम भूत बोलते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ है ये भूत का चलाया हुआ है, उसी तरह वो बोलता आ करके ऐसे ये बोलने लग गया इसमें। तब बुक्की के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता, ये लेखक कह रहा है, लेखक उसका छोटा भाई शिवजाल जी का। और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। तो इसके इस प्रताप सिंह में क्यों ना हम कलाम हुआ, बुक्की हम कलाम हुआ थी, ये भूत बोला था इसमें। अब कहते हैं जैसा भी हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था, यानी जो आदेश होता उस भूत का, वो लेखक कहता मैं उसी के आदेश अनुसार आगे क्रिया करता था। और इसी तरह राय साहब, राय साहब युशाल्यग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से लटकाट दिया इसी के प्रेजेंस में, वो भी उसने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से दो चार बार हुक्म हासिल किए थे। सारे जीवन में दो चार बार हासिल किए, पता लगे भूत बोल रहा है इसमें। फिर अपने आत्माओ, गरीबदास साहब जी ने कहा है सतगुर पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ये झूठे गुरु से भी भूत बन जाते हैं और केवल कबीर परमेश्वर जी ये चारों युगों में आते हैं, इनका ये प्रमाण है। सतयुग में सतसुकृत नाम से एक परमेश्वर आए थे पूर्ण ब्रह्म, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। इन राधा स्वामी पंथ वाले श्रद्धालुओं से कोई पूछने वाला हो कि ये कहते हैं सन 1818 में इनका जन्म हुआ, इससे पहले का कोई इतिहास है इस तुम्हारे परम धनी का? ये तुम परम धनी कहते हो, इससे पहले किसी युग में आया ऐसा है कोई इतिहास? नहीं। और वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आता है और यथार्थ ज्ञान वह स्वयं ही अपने भक्तों को प्रदान करता है। अब आपको दिखाते हैं इन नकली पंथों का नकली ज्ञान और झूठे नाम। अपुण आत्माओं, जब तक आपके समक्ष इनके द्वारा दिए गए उपदेश और मंत्र रूबरू नहीं होंगे और फिर वास्तविक मंत्र बताएंगे किस किस संत ने कौन कौन से मंत्र जाप किए और किस पर वो प्रमाणित हैं कि उनका मोक्ष हुआ, बहुत समय से उनकी जो ना महिमा गाते आए हैं भगतजन, अब इनके झूठे ज्ञान की एक झलक बताते हैं आपको। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ये ध्यान कहां लाओ, ये बाद विदा चतुराई। ये देखिएगा एक पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय, सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया है। शिवदयाल जी ने बोले हैं ये वचन जो आपके समक्ष रूबरू कराए जा रहे हैं, जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छपी गई है। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक हैं दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा। देखिएगा सार्वचन वार्ति नसर यानी वार्तिक दफा एक पृष्ठ दो पे हम यहाँ इस दो दफा देखेंगे। इसमें अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास जहां से रूह आई है यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। यहां सतनाम को ये स्थान कहते हैं, मुकाम माने स्थान, राधा स्वामी को भी स्थान कहते हैं। अब आगे देखो सार्वचन वार्तिक का भाग एक पढ़ रहे पृष्ठ तीन पे, एक नंबर में पढ़ा आपने ये, एक नंबर में ये दो नंबर था। अब तीसरा वचन पढ़ेंगे, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले और सब के सब दूर स्थान तक नहीं पहुंचे और बहुत से मंजिल एक पर। मंजिल तो आप आम आदमी समझता, मंजिल माने स्थान, यहां एक का उत्तर यहां दे रखा है स्थान, मंजिल माने स्थान। ये देखो ये मंजिल एक, इसका उत्तर यहां इनकार किया है स्थान। तो ये बताया कि सिर्फ संत मंजिल यानी स्थान यानी सतनाम, संत पांचवी मंजिल सतनाम पर गए, यहां भी स्थान सिद्ध हुआ सतनाम, और बिरले संत आठवीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे मंजिल। अब राधा स्वामी यहां स्थान है, सतनाम भी स्थान है। अच्छा अब वचन नंबर चार देखिएगा, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। अब इस स्थान से राधा स्वामी स्थान से नीचे, इस स्थान इस मुकाम से दो स्थान नीचे यानी राधा स्वामी से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। यहां दो स्थान पर मंजिल सतनाम और यहां बता रखा यानी मंजिल माने स्थान और यहां मुकाम सतनाम, मुकाम सतनाम को मुकाम बोल रहे हैं दो पृष्ठ पे और तीन ये चार पे, चार पे भी मंजिल सतनाम को मंजिल बोल रहे हैं। आगे देखो राधा स्वामी का स्थान बोल। अब ये क्या बताते हैं चौथे वचन में, अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का, और इस मुकाम से नीचे यानी राधा स्वामी स्थान से नीचे दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। यानी सतनाम को स्थान कहो, सतनाम का स्थान है, स्थान का स्थान है। इनका ज्ञान समझ लो जान से कि ये क्या कहना चाहते हैं, सतनाम माने स्थान बता रही है और मुकाम माने स्थान, स्थान का स्थान है। आगे फिर सतनाम को डिफाइन किया है विस्तृत। अब इस सतनाम को जिसको संतों ने सतलोक भी कहा है, सतनाम को सचखंड भी और सारसपद भी सतनाम को और सतसपद भी सतनाम को और सतनाम भी सतनाम को, सतपुरुष भी सतनाम को करके बयान किया है। अब ये भूत तो बनना था जब जिसका ज्ञान ऐसा है। एक और दिखाते हैं उसमें स्पष्ट वर्णन किया है, ये देखिए सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी व्यास से छपी है, वो आगरा वाली पढ़ी आपने। इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जर्नल सिंह।
प्रिंटेड बाय प्रिंटेड इन इंडिया लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। भूमिका में इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक अजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का, शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है और ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में अपने आत्माओं 109 वर्ष हो गए इनको, इस अड़ंगे न पढ़ते न रास्ते समझ में नहीं आई बोल के गया। सन 1902 में बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरुमुखी लिपि में छपवाया 1902 में। उसके बाद ये हिंदी में प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। शिवदयाल जी विद के साथ काफी विचार सुनते रहे इनके। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू कर दिया। 18 साल में ये उपदेश करते रहे। 18 वर्ष के बाद इनकी 17 वर्ष के बाद मृत्यु होगी। सन 1878 में इनकी मृत्यु होगी थी। बाबा जैमल सिंह जी का जन्म सन 1839 ग्राम दुगुमान जिला गुरदासपुर में हुआ। हरियाणा देखिएगा 18 अगस्त 1989 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए। 32 वर्ष नौकरी कर इन्होंने सन 1856 में जैमल सिंह जी को नामदान प्राप्त हुआ। सन 1856 में और सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी और सन 1889 में 11 वर्ष बाद पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए। ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। वहां इन्होंने अपना डेरा ब्यास शुरू कर दिया। 11 वर्ष बाद मनमुखी अपने आप 32 वर्ष सर्विस करते रहे नौकरी में। 1878 में उनकी मृत्यु होगी। 1889 में इन्होंने कौन आदेश दिया था? आदेश मिला होता तुरंत करता ही इस कार्य को, इन्हें मनमुखी किया। वैसे तो ये खुद भी कोई विशेष महत्व नहीं रखते क्योंकि ये खुद नुगरे थे और इनका ज्ञान आपके समक्ष है। आप और दिखाते हैं राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय वचन जो कि स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं सत्संगियों और सत्संगियों के खास जुबाने मुबारक से फरमाए। मृत्यु के समय अंतिम शब्दों में भी अंतिम वचनों में भी किसी को नाम का आदेश ये नहीं देकर 15 जून सन 1878 में मुताबिक आषाढ़ वदी पड़वा संवत 1935 रोज शनिचर वक्त सुबह ला अल सुबह इनकी मृत्यु हुई सन 1878 में। अब इसने क्या कहा है ये देखिएगा। अंतिम समय मरते समय ये वचन बोले। इन्होंने कति गीता जैसे श्लोक बनाकर नोट कर रखे। पांचवें वचन में कहा है शिवदयाल जी ने मरते समय। फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहेब सालग्राम और कुल साधुओं सत्संगियों सत्संगनियों की तरफ मुहतब होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो वैसा अब राधा जी को समझना। या राधा इनकी पत्नी थी। राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। फिर राधा जी की महाराज के हुक्म को हुक्म दिया कि शिब्बो और बुक्की को और विष्णु को पीठ न देना।
हम जा रहा सतलोक में, चिंता इनकी ठा रहा है, ये बता किसा सतलोक गया होगा, ये बुक्की की चिंता, फिर बुक्की में आगे फिर आ गया, जहां आशा था वासा हुई। अब यहां देखो, अब चौदहवा वचन, फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। हम सतनाम नयो सतलोक का है सतनाम, मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, और राधा स्वामी मत सालग्राम का चलाया हुआ है, यानी इस राधा स्वामी मत भी इस शिवजाल जी का नहीं है, इतना ही काफी है पुण्यात्माओं। और आगे कहा कि इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे, सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अपुणात्माओं, ये जो राधा स्वामी के श्रद्धालु जो कुछ चतुर व्यक्ति हैं, जो जिनको ये परिसर बना रखा है, इनको इनका उद्देश्य यही रह गया कि अपने भक्तों को सच्चाई का पता ना चले और ये उलझावें इनको जितने दिन तक ये रोक सकते हैं, पर अब नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आज कोई अंधा थोड़ा ही है, बुद्धिमान है, सबको भगवान चाहिए, भगवान के लिए ये वहां गए हैं। ये क्या कहते हैं कि जब उनको ये बताया जाता है कि तुम जिस राधा स्वामी पंथ को मानते हो और तुम्हारा शिवजाल जी जिसको तुम अपना मुखिया मानते हो, जिससे सब यहाँ पंथ चला मानते हो, वो तो कहता राधा स्वामी मेरा पंथ नहीं, मेरा तो सतनाम और अनामी का है। तो वो क्या कहते हैं आगे, ये भी तो लिखा है ना, राधा स्वामी के वो चतुर श्रद्धालु कहते हैं परिकर के, ये भी तो लिखा है ना कि उसको भी चलने देना, सत्संग पहले से ज्यादा होगा, जारी रखना। अब अंतिम समय आ गया शिवदयाल जी का, उसके सामने इसने पैरेलल की इच्छा के विरुद्ध ये राधा स्वामी पंथ चला दिया, नहीं तो ये थोड़ा ही कहते मेरा पंथ नहीं है, मेरा मत नहीं है। वे दुखी थे उससे कि ये नहीं चलाना चाहिए था, लेकिन फिर भी चला दिया तो क्या करे, मजबूर था, तो उसने कह दिया ठीक है इसको चलने देना।